ओम शांति। तो आज का विषय है हीन भावना से मुक्ति। तो आज बाबा ने कहा कि हमारा ये जन्म कौन सा है? श्रेष्ठ जन्म है, नया जन्म है। नया जन्म है तो सब चीज क्या होगी? नहीं होगी। कोई चीज नहीं होती है तो क्या होता है? खुशी होती है, आनंद आता है, उमंग उत्साह बढ़ता है। तो बाबा ने कहा कि हमारा ये जीवन है कैसा है? सर्वश्रेष्ठ जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। जो हमारा ये जीवन है वो देवताओं से भी उत्तम है। तो 84 जन्मों में ये जन्म है वो सर्वश्रेष्ठ जन्म है। तो इस जन्म का जितना हम लाभ उठाएंगे उतना ही पूरे 84 जन्म में हमारे जीवन में वो खुशहाली रहेगी। इस जन्म में अगर हम उदास है, हम कहेंगे कि भाई हम क्या करें, ऐसा भाई हम कहेंगे कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या हो गया, ये प्रश्न है अभी हमारे जीवन में। क्योंकि ब्राह्मण जीवन माना प्रश्नों से पार, विघ्न विनाशक जीवन। हम दूसरों के विघ्नों को भी विनाश करने वाले हैं। अगर हमारे ही विघ्न में हम उलझे रहेंगे, जूझते रहेंगे, तो फिर हम दूसरों के विघ्न कैसे विनाश कर सकते? कर सकते? नहीं कर सकते। तो बाबा ने क्या कहा कि आप कौन हो? विश्व कल्याणकारी और विघ्न विनाशक। और कौन है? हम पूर्वज है, विघ्न मुक्त है। तो पूर्वजों की क्या विशेषता होती है? पूर्वज माना पालना करने वाले, आधार मूर्त। आधार ही हिलेगा तो फिर क्या होगा? जाड़ का क्या होगा? है ना? तो हम आधार मूर्त है और उद्धार मूर्त भी है और उदाहरण मूर्त है। आज हम एग्जाम्पल देते हैं तो किसका देते हैं? बड़ों का देते हैं, बाबा का, मम्मा का, दादियों का, बड़ी बहनों का देते हैं। कि देखो इसके जीवन में कितनी नम्रता है, कितनी खुशी है, दूसरों को कितनी प्रेरणा देते हैं। किसी का कुछ भी होता है, विघ्न आता है, कोई प्रश्न है तो तुरंत दौड़े जाते हैं, दीदी इसका क्या करें, अरे ये क्या बड़ी बात है, ऐसे कहेंगे, है ना? ये तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे जीवन में ऐसी खुशहाली रहे। हम कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हम? और मधुबन में रहते हैं। मधुबन का अर्थ क्या है? मधुरता। और दूसरा वैराग्य वृत्ति। बाबा ने कहा अभी तुम कहाँ हो? वनवास में है। वनवास में क्या होता है? त्याग, तपस्या और सेवा भावना। अगर हमारे जीवन में त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, सेवा भावना नहीं है, तो फिर वो मधुरता है, वो मिठास है, वो वैराग्य की भावना है, वो दूसरों को सेवा करने की भावना है, वो नहीं रहेगी। तो बाबा ने हमारी लकीर कितनी खींच ली है? बाबा ने लकीर की जो कलम है किसको दिया है? हमको दिया है ना, तो उससे क्या करना है? कलम को यूज करना है ना, तो कलम को कैसे यूज करेंगे? जैसा हम कर्म करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण देंगे, भाई देखो कितने अच्छे कर्म किए हैं। आज बाबा का, मम्मा का उदाहरण देते हैं कि मम्मा धन नहीं दिया यज्ञ में, लेकिन क्या बन गई? मम्मा से क्या साक्षात्कार होता था? लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था और दुर्गा का साक्षात्कार होता था। जो जिसकी भावना होती थी वो भावनाएं पूरी हो जाती थी, मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु। तो हम भी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी है, वो भी सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, है ना? हम मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं ना। अगर हमारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होगी तो फिर हम दूसरों की कैसे करेंगे? हमारी इच्छा है घूमने की, कोई चीज अच्छी अच्छी खाने की, अच्छी पहनने की, तो फिर वो त्याग, वो तपस्या, वो सेवा, वो वैराग्य की भावना नहीं रहेगी ना। एक बार क्या हुआ, चंद्रमणि दादी जी विदेश जा रही थी, तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम विदेश जा रही है ना, तो कपड़े लेके जाओ। तो कपड़े कौन से थे? कुछ रंगीन थे, पुराने थे, तो बच्ची तेरे को जो उसमें आएगी वो ले ले। माना खुशी कितनी थी दादियों के अंदर कि बाबा ने दिया है, रंगीन है, छोटा है, पुराना है, वो नहीं देखा। तो जब दादी बॉम्बे में गई तो वो कमला बहन थी, उसने पूछा दादी आपकी सूटकेस कहाँ है? अरे सूटकेस क्या है, सूटकेस थोड़ी देखेंगे, मेरा चेहरा देखेंगे, मेरा चेहरे से साक्षात्कार होगा। तो कितना नशा, कितना खुशी थी जीवन में कि बाबा के भंडारे से जो मिलता है वो उसमें खुशी है। जगदीश भाई भी जब विदेश गए तो बाबा ने कहा बच्चे तेरे पास कपड़े हैं? तो उस समय तो कपड़े नहीं थे, तो उसने को बोला कि जो बाबा के भंडारे में जो कपड़े हैं उसमें से तुम लेके जाओ। तो इधर कोई दे के जाते थे जिसको, तो इसमें से सबसे बड़ी पैंट ली, वो भी उसको छोटी पड़ती थी। फिर आनंद किशोर दादा ने बोला तू लंदन जा रहा है? तो बोला हाँ। तेरे पास गर्म कपड़ा है? तो बोला नहीं है। तो क्या मरना है क्या वहां पर, इतनी ठंडी होती है? तो फिर बोला ये कोट दिया, वो पुराना था, वो भी बहुत छोटा पड़ता था, लेकिन खुशी थी अंदर से, बाबा ने भेजा है, बाबा की सेवा है, उमंग उत्साह रहता था। तो उमंग उत्साह जहां है, खुशी है, वहां कोई चीज की परवाह नहीं रहती है। जब बेगरी पार्ट था तो सब भोजन कर लेते थे, कुछ बचता था तो दादियां बिच्छे खाना खाती थी, सभी भोजन कर ले फिर हम खाएंगे ऐसे। तो कभी बचता था, कभी नहीं भी बचता था, तो खुशी ऐसी थी कि अरे खाना क्या है, बाबा मिला और क्या चाहिए, खाने की क्या बड़ी बात है, कोई खाने से पेट भरता है क्या, कभी किसी का भरा है जो भरेगा, बाबा की याद में पेट भरेगा, है ना। माना कितनी खुशी थी, देखो खाना खाया नहीं खाया वो परवाह नहीं, मौज में रहते थे, सेवा करके आते थे, ये नहीं कि भाई क्या भोजन करना है, जो है बस, चना है, मूंगफली है, कुछ भी है, ममरा है तो खाए, पानी पिया, सो गए बस। माना ये खुशी, सेवा की खुशी थी। बाबा कहते थे बच्चे लिटरेचर छपाओ, एक एक टाइम का खाना भोजन कम करके भी तुम लिटरेचर छपाओ, सेवा करो। वो सेवा का उमंग था कि लोगों को बाबा का परिचय मिले। ये नहीं था कि भाई हम पहले अपना भोजन तो बना ले, पहले अच्छी अच्छी चीज खा ले, आज पेड़ा खा ले, आज कुछ बर्फी बना ले, आज कुछ जलेबी बना ले, ये नहीं था कभी। तो त्याग में कितना खुशी होती है, कितना जो आनंद आता है, जिसको परमानंद कहते हैं, वो परमानंद का अनुभव कोई खाने पीने से या कोई अच्छी चीज पहनने से या घूमने जाने से नहीं मिलती है। टेम्परेरी हमको तो परमानेंट लेना है, टेम्परेरी लेना है। हमारा परमानेंट एड्रेस भी कहाँ का है, मधुबन है और दूसरा परमधाम हमारा घर है। तो जीवन में परमानेंट खुशी रहने का आधार क्या है, परमानेंट खुशी रहे वो है अतीन्द्रिय सुख। जिसने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया है उसको कोई चीज की परवाह नहीं रहती है कि ये चीज मिले, ये चीज चाहिए, इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, वो कोई चीज की नहीं परवाह थी। तब जगदीश भाई ने देखा कि ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम है कैसा है, देखा इसमें तो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है इतना, लेकिन इन लोग का मैनर्स कितना ऊंचा है, कितनी मधुरता से बात करते हैं। आज इतने बड़े बड़े सन्यासी लोग हैं, इतने बड़े विद्वान लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, लेकिन उसके बात करने की सेंस नहीं है। और ये भले पढ़े लिखे नहीं है लेकिन कितना प्यार से बात करते हैं, आत्मीयता है, मधुरता है, इसके जीवन में कितना वैराग है, अपनापन है। कोई भी आता था तो कैसा भी व्यक्ति, कैसा भी व्यवहार वाला होता था, लेकिन उसके प्रति इतना प्रेम भाव, इतना अपनापन देते थे, जो उसको लगता था कि ये बहुत अच्छी जगह है। कैसे भी भावना वाले आते थे लेकिन जो दादियों की भावना होती थी वो कैसी होती थी, बहुत ऊंची भावना। चोरी करने वाला भी आता था, कोई खराब दृष्टि वाला भी आता था, लेकिन उसके प्रति इतनी ऊंची भावना होती थी, इतना उसको प्यार देते थे, इसका इतना सत्कार करते थे, जो सब कुछ भूल जाता था कि मैं किस लिए आया था। चोरी करने वाला और भी ऊपर से भंडारी में डाल के जाता था, ऐसी भावना परिवर्तन हो जाती। तो ऐसी भावना क्यों आई इसके अंदर, आधार क्या है हमारे जीवन का। बाबा ने फाउंडेशन कितना पक्का किया है, ब्राह्मण जीवन का, ज्ञान योग का श्रेष्ठ धारणाओं का जो इतना ऊंचा जीवन बनाया, तो दूसरों को देखते ही प्रेरणा मिलती थी कि जीवन है तो यही जीवन है, ऐसा जीवन बनाना है। किसी को बोलते नहीं थे भाई आप ब्रह्मा कुमार बन जाओ, घर बार छोड़ दो, या अच्छे अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दो, गहने छोड़ दो, किसी को बाबा ने कहा नहीं। एक बार मम्मा और ब्रजेंद्र दादी दोनों बैठे थे, बात कर रहे थे। वो तो बहुत गहने ऊंचे पहनते थे। जब ब्रजेंद्र दादी की शादी हुई थी बाबा की बड़ी बेटी की बहू, उसको जो गहने पहने थे वो रानियों ने भी नहीं पहने थे, उससे ऊंचे गहने बाबा ने बनाए थे। उस समय बाबा ने उसके लिए 9 लाख हार बनाया था। बताओ कितने वो धनवान थे। जब उसकी सगाई होने वाली थी ब्रजेंद्र दादी की, तो उसका भाई ने कहा कि मेरी बहन है ना, बहुत हम बहुत बड़े घर के हैं, लखी बाबू आप हमारे जैसे नहीं हैं। तो जब बाबा ने उसको बुलाया, बाबा का दिखावा नहीं था कि हम बड़े हैं ये है, लेकिन बाबा प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। उसको दिखाया भाई, कोई प्रोग्राम के लिए बुलाया तो उसको दिखाया, हीरे का दिखाया, ज्वेलरी दिखाई, सब कुछ दिखाया। तो बहुत उसको लगा कि ये तो बहुत कुछ है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और इतनी खातरी किया जो राजा महाराजाओं की खातरी नहीं होती, इतनी ऊंची खातरी किया। वो तो खुश हो गया कि मेरी बहन तो इधर ही देना है। तो कैसा जीवन का प्रभाव पड़ता है, एक आदर्श जीवन। हम ब्राह्मण हैं, अगर हमारे बोल में मधुरता नहीं है, हमारे व्यवहार में एक आत्मीयता नहीं है, एक सहयोग की भावना नहीं है, तो कौन कहेगा कि आपको भगवान मिला है। एक बार एक पार्टी आई थी, तो उसको विश्वरतन दादा थे, भाई थे, उसने दिखाया तो उसको इतना प्यार मिला, तो जैसे लगा कि हम बाबा से मिले, तो यही बाबा होंगे। तो फिर दादा ने कहा कि आप बैठो, फिर हम फिर बाबा से मिलाएंगे। तो बोला आपसे इतना प्यार मिला, इतना स्नेह मिला, इतनी आनंद आया, तो बाबा से कितना मिलेगा। देखो कितना इंप्रेस होता है, हमारे जीवन से लोगों को कितनी प्रेरणाएं मिलती है कि इसका जीवन कितना खुश है। भले कुछ भी नहीं है, हमारे ऊंचे कपड़े नहीं है, हमने गहने ऊंचे नहीं पहने हुए हैं, कोई हमने फैशन नहीं किया है, लेकिन बाबा कहते हैं आपके गहने क्या है, कौन से गहने पहने हमने, दिव्य गुणों के गहने पहने हैं, हमारे पास कौन से रत्न है, कितने ऊंचे रत्न है जिसकी कोई वैल्यू कर सकते हैं। बाबा ने जब लिटरेचर छपवाया पहले पहले, तो बाबा ने कहा ये लिटरेचर है ना, इसको बेचना नहीं है। बोला बच्चे इसको बेचना नहीं है। तो बोला बाबा बेचेंगे नहीं तो फिर इसके खर्चा कहां से आएगा, इसको क्या करेंगे, तो लोग कहेंगे भाई मेरे लिए दे दो, एक मेरे भाई के लिए दे दो, एक मेरे मौसी है उसका भी प्यार है, एक मामा से भी, मामा का उसको भी प्यार है, सब लोग लेके जाएंगे, फिर कोई क्या इसको यूज करेंगे। तो बाबा ने कहा इसका प्राइस लिखो कि भाई ये जो छपाने की कीमत है ना, जो छपाई की कीमत है इस वही हम लेते हैं, बाकी इसका कोई खर्चा दे नहीं सकते हैं, इतना ये अमूल्य है जिसका कोई इसका वैल्यू नहीं दे सकते, इतना ही अनमोल है, ये खजाना है। कैसा है? अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं चुका सकते। तो बोला इसमें लिख दो। क्या लिखो? कि ये किताब आप पढ़ो, उसके बाद आपको नहीं अच्छा लगे तो फिर आप पढ़ के वापस दे के जाओ और उसका पैसा लेके जाओ। तो बोला ऐसा कब तब करेंगे हमेशा? जगदीश भाई ने कहा, बोला नहीं नहीं। तो बोला कि जब वापस को कब देगा भाई? भाई तुमने ठीक नहीं लिखा तो। बोला ऐसा तो है नहीं, लेकिन देखो कैसे प्रेरणा मिलती है बाबा के जीवन से, बाबा के बच्चों के जीवन से, दादियों से। हर एक ब्राह्मण आत्मा कौन है? एग्जाम्पल है। सारे सृष्टि के अंदर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, एक आदर्श, एक प्रेरणादायी जीवन वाला है तो किसका जीवन है? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का जीवन है वो एक प्रेरणादायी जीवन है, एक आदर्श जीवन है। तो ये आदर्श जीवन, ये अनमोल जीवन है, उस जीवन में क्या पुरुषार्थ होना चाहिए? हम क्या पुरुषार्थ करते हैं? बाबा ने क्या पुरुषार्थ करने के लिए बोला है? हमारा लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है हमारा? बाप समान बनना, फिर फरिश्ता बनना, फिर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना और अभ्यास। अभ्यास क्या करना है? पांच स्वरूपों का अभ्यास। पांच स्वरूप का अभ्यास करते हैं सब? आदि, अनादि, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। अगर वो स्वरूपों का अभ्यास करते रहे, उस स्वरूपों में मग्न रहे, तो फिर वो आनंद आता है, वो खुशी रहती है, वो लवलीन स्थिति रहती है जो कोई भी प्रकार का विघ्न है। बाबा कहते हैं विघ्न कब आता है, माया कब आती है? जब हम बिजी नहीं रहते हैं, हम फ्री रहते हैं तो माया को चांस मिलता है। आप बिजी रहेंगे, भाई आप बात कर रहे भाई से तो भाई दूसरा भाई आएगा तो देखेगा भाई ये बात कर रहे हैं, थोड़ा बैठो, बिजी है तो माया भी देखती है कि फ्री है तो चलो चले जाओ उसके पास। बिजी है तो कहे भाई ये तो बिजी है, इसको टाइम नहीं है, फिर दूर से ही भाग जाएगी। तो बाबा ने हमें क्या कार्य दिया है? अभी हम फ्री है क्या? कौन से कार्य करने हैं अभी हमके? बाबा ने कहा कि 21 जन्म की बादशाही मिल रही है, उसमें क्या हम बन रहे हैं? क्या बनने का लक्ष्य है हमारा? लक्ष्य जो हम देखते हैं क्या लक्ष्य है? लक्ष्मी नारायण। बाबा ने कहा तो कितनी गद्दियां है उसमें? लक्ष्मी नारायण की भी कितनी गद्दियां है उसमें? कितनी फिक्स हो गई है? एक फिक्स हो गई है। बहुत अच्छा है, भाग्य है, बहुत अच्छा लक्ष्य है कि भाई हम सतयुग में विश्व के मालिक बनने वाले हैं। वो निर्मल शांता दादी कहती थी कि 3 in 1, और फिर 4 in 1 भी बोला उसने। कैसे 4 in 1? माना पहले लक्ष्मी नारायण का हम बच्चे बनेंगे, तो 4 in 1। तो हमें भी खुशी रहती है कि हम कितने वन हैं, कि 1, 2, 3 कितने हैं, कितने वन हैं, 4 in 1 है या 1, 2 है या 1, 3 है। शिव बाबा तो है ही हमारा बाप, फिर ब्रह्मा बाबा भी है, फिर बाद में लक्ष्मी नारायण के राज्य में भी आएंगे, है ना। तो अभी हमने लौकिक को भी अलौकिक बनाया है, तो आज बाबा ने कहा ना कि सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करेंगे क्या होगा, एक रस स्थिति का अनुभव होगा। एक रस स्थिति का अनुभव क्यों नहीं होता है? दूसरे रसों में हम रहते हैं, भाई कोई चीज अच्छी मिल जाए, कोई चीज अच्छी पहनने को मिल जाए, उस रसों के अनुभव में वो रस का अनुभव नहीं होता है। हाँ? वो तो बहुत अच्छा बात है। एक बार एक गेस्ट आए थे, वीआईपी आए थे, तो उसने बोला भाई इतनी चीजें यहाँ क्यों बनाते हो? तो जगदीश भाई ने कहा कि हमारा भोजन आप खाओगे? हमारे भोजन में तो न मिर्ची होती है, न मसाला होता है, नमक भी कभी कोई डालते नहीं डालते, क्योंकि फीका होता है तो टेस्ट नहीं करते, तो उसमें कभी कोई नमक भी डालना भूल जाते, फिर भी हम उसको खाते हैं ब्रह्म भोजन समझ के। आप इसको खाएंगे क्या? तो इसके लिए हमें कभी किसी के लिए पकौड़ा भी बनाते हैं, कोई समोसा भी बनाते हैं, कोई आचार भी रखते हैं। आप आते हैं तो आप मेहमान हैं, मेहमानों के लिए। किसी को पसंद आए, कोई छाछ पीते हैं, कोई दही खाते हैं, कोई आइसक्रीम खाते हैं तो आइसक्रीम भी खिलाते हैं। तो ये सभी पालना देते हैं। भगवान के घर में आए, बाप के घर में आए तो बच्चे हैं, आप मेहमान हैं, तो अब कभी आपको कोई चीज नहीं लगी तो आचार भी रखते हैं, तो ये सब चीजें। एक बार क्या हुआ, बाबा कुछ खा रहे थे, तो भाई ने कोई भाई ब्रिजमोहन भाई आए तो बोला बाबा बहुत अच्छी चीज खा रहे लगता है, बहुत प्यार से खा रहे थे, तो बोला बच्चे खाओगे? तो दिया उसको, तो वो तो बॉयल करेला था, उसमें ना नमक था ना कुछ था, मिर्ची था। अगर मसाला, मिर्ची मसाला वाला करेला हो तो भी थोड़ा टेस्ट आएगा, इसमें गुड़ डालते हैं, कुछ मसाला डालते हैं, लेकिन एकदम बॉयल था जिसमें कुछ नमक भी नहीं था, तो वो तो खा भी नहीं सकते और फेंक भी नहीं सकते बाबा ने। तो फिर मम्मा आई, बच्चे क्या हुआ? तो बाबा ने लगा कि बाबा बहुत चीज बहुत प्यार से खा रहे, कोई बढ़िया चीज खा रहे होंगे। तो क्या देखो, बाबा बॉयल करेला भी खाते थे, शुगर था, लेकिन कितना प्यार से खाते थे। देखो एक बार कई जगह भोजन करने जगदीश भाई गए थे, तो बोला कि देखा इसमें कुछ आलू होगा, कोई मटर होगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया अंदर, पानी पाड़ी। लेकिन ब्रह्मा भोजन, बाबा की याद में बनाया भोजन, कितना स्वाद आता है इसमें। अगर बाबा की याद में खाओ, सूखी रोटी भी खाओ, तो भी उसमें आनंद आता है। जब जगदीश भाई विदेश में गए थे तो कोई भाई आते थे रोज उस क्लास करने के लिए, कभी थोड़ा खिला दिया इसको तो रोज आने लगे, कह के भाई साहब हम आपको मेहनत तो नहीं देते लेकिन आप थोड़ा सा हमारे लिए ज्यादा बना लिया करो तो क्या स्वाद है इसके अंदर। देखो वो तो मिर्ची मसाला बिगड़ कर खाते थे, लेकिन बाबा के ब्रह्मा भोजन में कितना टेस्ट होता है। यहाँ कोई भी वीआईपी आते हैं, एक बार कोई बड़े गेस्ट आए थे तो उसका भोजन ज्ञान सरोवर में था और यहाँ प्रोग्राम था, 9:30 बज गया। तो दादी ने सोचा कि अभी इतना भोजन ठंडा हो गया होगा, मेहमान बड़े वीआईपी है, गवर्नर है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ऐसे वीआईपी है तो क्या सोचेंगे। लेकिन सब चीज़ इतना खुशी से, इतना प्यार से खा रहे थे, इतना आनंद आ रहा था उसको। देखो तो ये ब्रह्मा भोजन बाप दादा का प्रसाद, लोग कितना खुशी उसे खाते हैं, उसमें कितना शक्ति भर जाती है। लोग भूल जाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। देखो देखो बाहर लोग खाने वाले कितना मसाला वाले कितनी चीजें खाते हैं कई कई, लेकिन यहाँ बाबा का ब्रह्मा भोजन है, बाबा की याद में बाबा को भोग धराते हैं तो उसमें कितना शक्ति भर जाती है, कितना टेस्ट भर जाता है, है सिंपल। तो इतना ही हम खुशी से, इतना आनंद से, इतना प्यार से ब्रह्मा भोजन स्वीकार करते हैं तो ब्रह्मा भोजन हमारे जीवन में कितनी शक्ति प्रदान करता है। तो वो बाबा कहते हैं ये प्रसाद है, शरीर भी निरोगी कब रहेगा। बाबा कहते हैं उसको आप दवाई समझ करके, प्रसाद समझ करके खाएंगे। आप ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी भोजन नहीं करते। एक बार बाबा ने कहा आप भोजन नहीं करते हो, लेकिन क्या करते, क्या खाते हो? प्रसाद ही खाते हो। तो जो प्रसाद ही खाते हो कितने भाग्यवान होते हैं कि दोनों टाइम बाबा को भोग लगता है, प्रसाद ब्रह्मा भोजन हो जाता है। तो हम कितने भाग्यवान हैं, लोगों को कभी थोड़ा प्रसाद मिल जाता है, एक दाना कणा, तो भी कितने प्यार से सिर पे चढ़ा करके, कितना नैनों में रख के खाते हैं, है ना? कितना अपना भाग्य समझते हैं प्रसाद के लिए। कोई जाते हैं तीर्थ यात्रा करने तो उसके लिए वो प्रसाद ले जाते हैं, तो कितना वो अपना पुण्य समझते हैं कि हमको इतना, जो तीर्थ करने गए थे, यात्रा करने गए थे, वहाँ से हमारे लिए प्रसाद लेके आए, जल लेके आए हैं। तो हम तो रोज ऐसा महाप्रसाद स्वीकार करते हैं, तो हम कितने कितने भाग्यवान हैं। ओम शांति।